Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। आयरिश अमेरिकन उन अमेरिकियों को कहा जाता है जो आयरलैंड के मूल निवासी हैं, लेकिन वर्षों पहले अमेरिका में जाकर बस गए थे। प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि आयरिश अमेरिकन की कुल संख्या करीब 36 मिलियन है, यानी अमेरिका की कुल आबादी का 10% लगभग। जर्मन अमेरिकन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। अमेरिकी आयरिश डायस्पोरा को एक महत्वपूर्ण जातीय समूह माना जाता है। आयरिश मूल के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी बसे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका में लॉबिंग पॉडकास्ट का ये दूसरा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। अमेरिका में आयरिश प्रवासियों का इतिहास इस देश की आज़ादी के इतिहास से भी और ज़्यादा पुराना है। अमेरिकी इतिहास में आयरिशों की भूमिका एक मील का पत्थर समझी जाती है। हालांकि इस डायस्पोरा को आम तौर पर आयरिश के रूप में जाना जाता है, लेकिन नज़दीक से देखने पर इसमें दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ पाई जाती हैं, यानी आयरिश अमेरिकन और आयरिश स्कॉटिश अमेरिकन। आयरिश अमेरिकन अमेरिका में आयरिश मूल की आबादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कैथोलिक ईसाई हैं और ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर तट और पश्चिमी तट और शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में रहते हैं, जबकि आयरिश स्कॉटिश अमेरिकन ज़्यादातर दक्षिण और मध्य अमेरिका में और उत्तरी न्यू इंग्लैंड, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया जैसे राज्यों में रहते हैं। प्राथमिकताओं और विचारों में अंतर के बावजूद इन दोनों समूहों ने मिलकर एक समुदाय बनाया है जो आयरिश समुदाय के नाम से लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। ये अपनी ऐतिहासिक स्थिति और संगठनात्मक सामंजस्य के कारण अमरीका के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभाव रखता है। उनकी धार्मिक और परिवार उन्मुख संस्कृति और एकजुटता ने उन्हें अमेरिका में एक महत्वपूर्ण लॉबी बना दिया है। आयरिश अमेरिकी समुदाय अन्य जातीय समूहों की तुलना में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अमेरिकी समाज में जल्दी और पूरी तरह से घुल मिल गया, जिसका समाज पर एक अद्वितीय प्रभाव पड़ा। जातीय एकता, परिवार और धर्म की उच्च भावना जैसे कारक इस समुदाय की सफलता के बड़े महत्वपूर्ण कारण रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने अप्रवासन के शुरुआती दिनों से ही आयरिश लोगों की जातीय एकता की उच्च भावना के कारण न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में छोटे स्थानीय समुदायों का गठन करने में सफल रही। चूंकि आयरिश अप्रवासी गरीब थे और उनके पास अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा करने और भूमि और कृषि हासिल करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वे आते ही बंदरगाही शहरों में बस गए और धीरे धीरे उनकी आबादी में वृद्धि होती चली गई। समान भाषा और संस्कृति के साथ साथ धन भी इन समाजों की ताकत बना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी की शुरुआत से आयरिश कैथोलिकों का अमेरिका में बड़े पैमाने पर अप्रवासन हुआ। हालांकि इसके कारण अज्ञानियों का आंदोलन जैसे कैथोलिक विरोधी समूहों ने भी जन्म लिया जो अमेरिका के मूल निवासियों और प्रोटेस्टेंटों के समर्थक थे। इन समूहों ने आयरिश मूल के नागरिकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का आधार तैयार किया। विरोधियों की ये भावना उनके बीच एकता में वृद्धि का कारण बनी और उसने इस धारणा को जोड़ा कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो अधिक सुरक्षा और समृद्धि का आनंद ले सकेंगे। दरअसल धार्मिक उत्पीड़न की भावना के कारण आयरिश समाज अधिक मजबूत और एकजुट हुआ। इस बीच आयरिश समुदाय की एकता और एकजुटता में आयरिश कैथोलिक चर्च की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आयरिश लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम हमेशा चर्च में इकट्ठा होना और उसके कार्यक्रमों में भाग लेना रहा है। अपने स्वयं के विशेष स्कूलों की स्थापना करके कैथोलिक चर्च ने अमेरिका में आयरिश लोगों की नई पीढ़ी को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आयरिश मूल के समुदाय का विस्तार हुआ। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार ने भी इस प्रक्रिया में मदद की, जिससे आयरिश वंशजों के पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे सुधार हुआ और उनके सामाजिक वर्ग के प्रचार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार हुई। क्योंकि आयरिश की पारंपरिक संस्कृति अमेरिकी मध्यम वर्ग की विशिष्टताओं से बहुत मेल खाती थी, इसलिए आयरिश वंशजों ने इस वर्ग के पैटर्न और व्यवहार को आसानी से स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वे इसे बढ़ावा देने में सफल रहे। अमेरिकी मध्यम वर्ग के रूप में उनकी स्थिति स्थिर हो गई। इन विशिष्टताओं के साथ आयरिश वंशजों ने पारंपरिक रूप से अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन उपकरणों का भी उपयोग किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपकरण श्रमिक आंदोलन है, जिसके निर्माण और विकास में आयरिश वंशजों ने अमेरिका में प्रमुख भूमिका निभाई। मूल रूप से 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी श्रमिक आंदोलन इस देश में सामाजिक परिवर्तन का कारण बना है। श्रमिकों द्वारा सामाजिक न्याय और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त करने के प्रयास और संघर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक वातावरण को नया आकार दिया। यहाँ तक कि श्रमिक संघों के सांस्कृतिक प्रभाव और महत्व ने उनके राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ा दिया। 1840 के दशक में अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद कैथोलिक आयरिश अप्रवासी राजमार्ग, नहर, रेलवे और खनन परियोजनाओं की ओर आकर्षित हो गए। दरअसल वे इन परियोजनाओं के लिए श्रमिक बल का मुख्य स्रोत बन गए। 1850 के दशक से लेकर आज तक प्रमुख अमेरिकी शहरों के पुलिस और दमकल विभागों में आयरिशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यूयॉर्क, शिकागो, न्यू ऑरलियंस और सैन फ्रांसिस्को में अधिकांश कर्मचारी और इन विभागों का नेतृत्व आयरिश अमेरिकनों के हाथ में है। आयरिश अमेरिकन्स की उच्च संगठनात्मक शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व कैडरों में उनकी उपस्थिति है, इसलिए 1850 के दशक से आज तक अमेरिकी कैथोलिक चर्च और श्रमिक संघों के अधिकांश नेता और बड़े शहरों में डेमोक्रेटिक पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स आयरिश मूल के हैं। इनमें विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा केंद्र भी शामिल हैं। जॉन एफ कैनेडी को कैथोलिक आयरिश राजनीतिक नायक कहा जा सकता है। एली स्मिथ, जो 1928 का राष्ट्रपति चुनाव हर्बर्ट हूवर से हार गए थे, राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने वाले पहले कैथोलिक आयरिश उम्मीदवार थे। 1830 से 1960 के दशक तक 1920 जैसे अपवादों को छोड़कर 80-95% आयरिश कैथोलिकों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया और उसका समर्थन किया। वर्तमान में कैथोलिक मूल के अधिकांश आयरिश डेमोक्रेटिक पार्टी में सक्रिय हैं, हालांकि उनमें से कुछ रिपब्लिकन पार्टी का भी नेतृत्व कर चुके हैं और अभी भी इस पार्टी में सक्रिय हैं। पार्टी गतिविधि के अलावा कैथोलिक आयरिश वंशजों की शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है और वे बोस्टन, सिनसिनाटी, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, सैन लुइस, सैन पॉल और सैन फ्रांसिस्को जैसे कई बड़े शहरों के मेयर रहे हैं। शिकागो, बोस्टन और जर्सी सिटी जैसे शहरों में आयरिश मूल के मेयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और वर्तमान में शिकागो, बाल्टीमोर, मिलवॉकी, ऑकलैंड, अमाहा, सेंट पॉल, जर्सी सिटी, रोचेस्टर, स्प्रिंगफील्ड, रॉकफोर्ट, सैन फ्रांसिस्को के मेयर यही लोग हैं। स्कैंटन और सियरा कुजे आयरिश मूल के हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैथोलिक मूल के आयरिशों के अलावा प्रोटेस्टेंट आयरिश या स्कॉटिश मूल के आयरिशों की भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में और विशेषकर राष्ट्रपति पद पर महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। हालांकि उनका प्रभाव कैथोलिकों जितना अधिक नहीं रहा है, उनके वोटों के प्रभाव का भी अध्ययन कम ही किया गया है। सामान्य तौर पर कम से कम 23 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को आयरिश मूल का माना जा सकता है, हालांकि उनमें से प्रत्येक का आयरलैंड से जुड़ाव अलग अलग मात्रा में रहा है। उदाहरण के लिए एंड्रयू जैक्सन के पिता और माता दोनों आयरलैंड में पैदा हुए थे, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश दो आयरिश अमेरिकनों की संतान है। कैनेडा की आयरिश जड़ें मजबूत थी और रीगन के पिता आयरिश मूल के थे और उनकी माँ आयरिश स्कॉटिश मूल की थी। जेम्स नॉक्स पोल्क भी आयरिश स्कॉटिश थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक तिहाई से अधिक राष्ट्रपति आयरिश स्कॉटिश वंश के हैं और उनकी जड़ें अस्टर से जाकर मिलती हैं। बिल क्लिंटन को इस प्रकार के आयरिश मूल का एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जा सकता है, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान दो बार अस्टर का दौरा भी किया था। संस्कृति और सांस्कृतिक संपत्तियों और प्रभाव का उपयोग शुरुआत से लेकर आज तक आयरिश अमेरिकियों के अन्य उपकरणों में से एक रहा है। सेंट पैट्रिक दिवस का वार्षिक उत्सव, जिसे अमेरिका में आयरिशों की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है, एक ऐसा अवसर बन गया है जहां सभी महान आयरिश रीति रिवाजों और परंपराओं को मनाया जाता है। हालांकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, इस उत्सव का स्थान और सांस्कृतिक प्रभाव इतना ज़्यादा है कि मार्च को, कि जो इस उत्सव का महीना है, कांग्रेस द्वारा आयरिश अमेरिकनों की विरासत का महीना करार दिया गया है। इसके अलावा सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में आगमन के बाद से आयरिश अधिकांश कलात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे साहित्य, दृश्य कला और खेल में सक्रिय रहे हैं। इन क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध लोग आयरिश मूल के रहे हैं। इस महत्वपूर्ण उपस्थिति और प्रभाव से आयरिश समुदाय को अमेरिका के इतिहास में एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में अमेरिका में आयरिश लॉबी के इतिहास की समीक्षा करते हुए हमने अमेरिकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना में इसकी भूमिका और प्रभाव के बारे में बात की। अगले एपिसोड में हम अमेरिका की एक और लॉबी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप अगले एपिसोड में भी हमारा साथ देंगे तो हमें खुशी होगी। हमें आपके सुझावों और आलोचनाओं का इंतजार रहेगा।